ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय में कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक इस अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों सहित मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इस दौरान बोहरा समुदाय के सदस्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह लंबे समय से उनकी मांग थी। प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे वर्षों की मेहनत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लाने का प्रमुख कारण यह था कि प्रचलित प्रणाली से अधिकतर महिलाएं, विशेष रूप से विधवाएं, पीड़ित हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि न्यायालय देश के राष्ट्रपति को निर्देश दे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान की व्याख्या कर सकता है। श्री धनखड़ ने कल नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति आवास में राज्यसभा प्रशिक्षुओं के 6वें बैच को संबोधित करते हुए यह बात कही। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने हिंसा की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से कराने की मांग याचिका को खारिज कर दिया है। विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी और अन्य की मांग की याचिका पर न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र है और यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र रूप से NI जांच का आदेश दे सकती है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कल जाति जनगणना कहे जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कानून मंत्री HK पाटिल ने कहा कि सदस्यों ने सर्वेक्षण और अन्य तकनीकी मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी मांगी। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान समुदायों की संपत्ति और आय के स्रोत पर चर्चा की गई। 2 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रिपोर्ट पर आगे चर्चा की जाएगी। नेपाल में घरेलू बाजार में सोने की कीमत 3600 रूपए प्रति तोला बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एक तोला 11.66 ग्राम के बराबर होता है। नेपाल गोल्ड एंड सिल्वर डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार हॉलमार्क सोने की कीमत बुधवार को 1,87,000 रूपए से बढ़कर 1,90,600 रूपए प्रति तोला हो गई। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT प्रणाली के क्रियान्वयन से परिवर्तनकारी परिणाम आए हैं। भारत की DBT प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से नीति पत्र का हवाला देते हुए श्री गोयल ने बताया कि पारदर्शी और तकनीकी संचालित सुधारों के कारण भारत का कल्याण दक्षता सूचकांक 2013 के 0.32 से बढ़कर 2023 में 0.91 हो गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 162 रन बनाए। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम ने विल जैक्स के 36 रन की मदद से 18 ओवर एक गेंद में 6 विकेट खोकर 166 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।